आलवर एवं आचार्य परंपरा। दक्षिण भारत में वैष्णव धर्म का विकास आलवर आंदोलन के रूप में विकसित हुआ। आलवर का अर्थ ज्ञानी व्यक्ति होता है। आलवरों की पारंपरिक संख्या 12 है। पोए गई भूतलवार, पेया पेयलवार, तुरुमलिशे नामलवार, मधुर कवि कुलशेखर पेरियालवार, आंडाल टोंडा डिपोडी तिरुपन्नान तिरुमगे आलवार। इन अलवार संतों का जन्म तमिल क्षेत्र के भिन्न स्थानों पर हुआ था। पोईगई भुत्तलवार पेई तथा तिरुमलिशे पल्लव क्षेत्र में जन्मे थे। कुलशेखर चेर तेज का था। नामलवार मधुर कवि पेरियालवार तथा आंडाल पांड्य क्षेत्र में जन्मे थे। टोडर डिपोडी तिरुप्पान तथा तिरुमगे चोल देश के निवासी थे। इन आलवार संतों में तिरुप्पान एवं नामलवार विल्लाल वर्ग के थे। पेरियालवार ब्राह्मण कुलशेखर राजा तथा तिरुमगे लुटेरा वर्ग का था। आलवर आंदोलन संभवतः पल्लवों के यहाँ से प्रारंभ होकर चोल देश के मार्ग से तिन्नेवली तक पहुँच गया। अधिकांश विद्वान इस वैष्णव आंदोलन का काल 7वीं-8वीं शताब्दी स्वीकार करते हैं। प्रारंभिक अलवार भूतलवार पेलवार पोईगई का काल 7वीं शताब्दी माना जाता है। तिरुप्पान तिरुमलिशे तिरुमगे कुलशेखर तोड्र डिपोडी पेरियलवार एवं आंडाल का काल 8वीं शताब्दी माना जाता है। नमलवार तथा मधुर कवि 10वीं शताब्दी के हैं। आलवार संतों की भक्ति उत्तर भारत के पारंपरिक एवं रूढ़िवादी विचारधारा के विरुद्ध थी। आलवारों ने मोक्ष की प्राप्ति के लिए सरल माध्यम से ईश्वर की भक्ति को माध्यम माना। भूतलार के अनुसार वेदों का ज्ञान कीर्तन है। वेदों को न पढ़ पाने वाला भी यदि कृष्ण का कीर्तन करे तो उसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर की संतान है तथा उसके प्रति अनुराग रखकर वह मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अलवार संतों की रचना प्रबंधम कहलाती है। इसमें आलवार कवियों की रचनाओं का संग्रह है। इस महान अलवार संतों का वर्णन निम्न है। नामलवार यह अलवार संतों में महानतम था। इनकी रचनाएं तिरुविद्रुतम तिरुआशीरियम पेरियत्तिरुवंतादि तथा तिरुवायमौली थी। दक्षिण में इन्हें चतुर्वेद कहा जाता है। नामलवार के अनुसार ईश्वर अंतर्यामी सर्वव्यापी तथा सर्वत्र विद्यमान है। आत्मारूपी मंदिर से इसे खोजा जा सकता है। नालियर प्रबंधम का लगभग 1/4 भाग इसी की रचना है। इसे तिरुवायमौली कहा जाता है। इस काव्य में प्रेम की अत्यंत सूक्ष्म अभिव्यक्ति प्राप्त होती है। पेरियालवार इसे विष्णु चित्र भी कहा जाता है। यह भी विल्लिपुत्तर में ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। पेरियालवार की तिरुपल्लाडु नामक रचना सर्वाधिक प्रसिद्ध है। आंडाल को इसकी पुत्री माना जाता है। एक अनुश्रुति के अनुसार पेरियालवार ने इसे जमीन की खुदाई करते समय वृक्ष के नीचे प्राप्त किया था। पेरियालवार ने पांडे शासक को अपने प्रभाव से वैष्णव बना लिया था। कुलशेखर मालाबार का शासक था। राजपद त्याग कर उसने कृष्ण भक्ति अपनाई। कुलशेखर के द्वारा रचित पद पेरुमाल तिरुमोली कहलाते हैं। मुकुंदमाला जिसकी तुलना गीत गोविंदम से होती है की रचना भी इसी ने की थी। मधुर कवि यन्नामलवार का शिष्य था। इसके गुरु की प्रशंसा में लिखे गए गीत अत्यंत प्रसिद्ध हैं। मधुर कवि ने गुरु भक्ति एवं ईश्वर भक्ति को समान माना है। आंडाल यह एकमात्र अलवार स्त्री संत थी। इसे पेरियालवार की पुत्री माना जाता है। दक्षिण भारत में यह कृष्ण गोपी भक्ति के प्रवर्तक थी। आंडाल के भक्ति गीतों में नच्चियार तिरुमोली तथा तिरुपावी प्रसिद्ध है। आंडाल एवं उनकी सहेलियां सूर्योदय से पूर्व स्नान कर कृष्ण मंदिर जाती थी तथा रासलीला का अनुभव करती थी। ये दक्षिण में मीरा के समकक्ष है। तिरुप्पान का जन्म निम्न कुल में हुआ था। इसने ईश्वर भक्ति में 10 पदों की रचना की थी। यह करुणा एवं क्रंदन से भगवान की प्रार्थना करता था। इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान रंगनाथ ने मंदिर के पुजारी को आदेशित किया कि वह अपने कंधे पर बैठाकर इसे भगवान के समक्ष उपस्थित करे। टोडर किपोडी या नर्तकी के भवर में फंसकर अपनी सुध-बुध खो बैठा था। रंगनाथ की कृपा से इसे मुक्ति प्राप्त हुई। इसके द्वारा सुजित पद तिरुमाले तथा तिरुपल्ली एलुच्ची के नाम से जाने जाते हैं। इनके अनुसार मनुष्य की 100 वर्ष की आयु में आधी निद्रा तथा अन्य कार्यों में बीतती है। अतः मनुष्य को अपने जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। यह पुनर्जन्म का पक्षधर न होकर मुक्ति का पक्ष रखता था। तिरुमरगई यह चोल सैनिक अधिकारी था। वैष्णव पत्नी के प्रभाव में यह वैष्णव हो गया। श्री रंगम के मंदिर निर्माण में इसने अपने जीवन को समर्पित कर दिया। इसकी प्रमुख रचनाएं पेरियत्तिरुमोली, त्रिकुंडर दांडकम, त्रिनंडु दांडकम, तिरुवेल्लूर के सिरियत्तिरुमंडलम तथा पेरिय तिरुमंडलम है। इसके भक्ति का स्वरूप प्रेमी और प्रेमिका के रूप में है। इसने जैन एवं बौद्ध धर्म के विरुद्ध प्रचार किया तथा श्री रंगम के मठ की मरम्मत के लिए उसने नेगपट्टम के बौद्ध विहार से एक स्वर्ण मूर्ति चुराई थी। आरवाल आंदोलन के पश्चात इसके दार्शनिक स्वरूप पर आधारित श्री वैष्णव संप्रदाय का विकास हुआ। इसके प्रमुख आचार्य कहलाते थे नाथमुनि नामक आचार्य इसके संस्थापक माने गए हैं। प्रमुख इसके वास्तविक संस्थापक यमुनाचार्य थे। श्री वैष्णव संप्रदाय विशिष्ट अद्वैत पर आधारित था तथा इसकी उपासना का आधार ईश्वर के प्रति समर्पण था, जिसे प्रपत्ति कहा जाता था। इस संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ आचार्य रामानुजाचार्य थे। नाथमुनि नामलवार के शिष्य थे। वैष्णव आचार्य ने प्रपत्ति की अवधारणा विकसित की, जिसे व्यवहारिक रूप से नामलवार ने विकसित किया था। श्री वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख आचार्य रंगनाथाचार्य या नाथमुनि पुंडरीकाक्ष राम मिश्र यमुनाचार्य तथा रामानुजाचार्य थे। 1137 ईस्वी में रामानुजाचार्य की मृत्यु के पश्चात श्री वैष्णव संप्रदाय दो भागों में विभक्त हो गया। पहला वंडकली संप्रदाय, इसे उत्तरी संप्रदाय कहते हैं। इसके अनुसार मोक्ष की प्राप्ति प्रबंधमय या तमिल वेद की अपेक्षा वेदों, उपनिषदों या गीता के ज्ञान से संभव है। दूसरा टेक्निकली संप्रदाय दक्षिण केंद्र कहलाता है। इसके अनुसार परम ज्ञान का आधार प्रबंधम ही है। बटकले संप्रदाय, श्री वैष्णव बटकले संप्रदाय का संस्थापक कुरुकेश तथा विष्णुचित्र वरदाचार्य आर्य रामानुज वेदांत दैशिक आदिवर्ण साठकोय स्वामी तोल्लप आदि इसके प्रमुख आचार्य थे। बटकले की भक्ति प्रपत्ति पर आधारित थी, ये कर्म पर बल देते थे। बटकले के अनुसार श्री लक्ष्मी भी मोक्ष प्रदान करने की शक्ति रखती हैं, परंतु बटकले जाति व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे तथा गैर ब्राह्मणों को अध्यात्म शिक्षा देने के विरोधी थे। ये गैर ब्राह्मणों को शिक्षा देते समय ओम शब्द का प्रयोग नहीं करते थे। उनकी भक्ति मार्कंड किशोर न्याय कहलाती थी। जिस प्रकार बंदर का बच्चा अपने कर्म के द्वारा अपनी माता से चिपका रहता है, उसी प्रकार प्रपत्ति का प्रयास आवश्यक है। तैनकले संप्रदाय, श्री वैष्णव तैनकले संप्रदाय का संस्थापक एम्बार को माना गया है। पिल्ले लोकाचार इस संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक है। पराशर भट्ट नंजियर नम पिल्ले कृष्णपाद अलगिय यमणवाल मुनियादि इसके प्रमुख संत हैं। तैनकले संप्रदाय भी ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रपत्ति पर बल देता था। यह संप्रदाय श्री लक्ष्मी को मोक्ष प्रदान करने वाली देवी नहीं स्वीकार करता है, यह उदारवादी संप्रदाय है। इनकी मान्यता थी कि निम्न जाति का सच्चा भक्त ब्राह्मण के समान है तथा उससे शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। ये हर जाति से समान व्यवहार करते हैं। इनकी भक्ति परंपरा मार्जर किशोर न्याय कहलाती है, अर्थात जिस प्रकार बिल्ली का बच्चा बिना उसके स्वयं के प्रयास से अपनी माता द्वारा मुंह में दबा कर ले जाया जाता है, ईश्वर प्राप्ति के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है। केवल ईश्वर प्रेम पर्याप्त है तथा मोक्ष उसी की कृपा से प्राप्त होता है। प्रमुख वैष्णव आचार्य नाथमुनि, इन्हें भी रंगनाथाचार्य भी कहा जाता है। इनका जन्म मन्नारगुड़ी के वीर नारायणपुर में हुआ था। नीलकंठ शास्त्री नाथमुनि का समय 824 से 924 ईस्वी मानते हैं। नाथमुनि का धार्मिक निवास स्थान श्री रंगम था तथा इनकी धार्मिक कृतियां न्याय तत्व एवं योग रहस्य थी। नाथमुनि ने न्याय तत्व में विशिष्टाद्वैत का मत प्रतिपादित किया तथा 4000 आलवर पदों को नालियर प्रबंधम के रूप में संग्रहित किया। यमुनाचार्य, इन्हें आलम्बदार भी कहा गया है, ये नाथमुनि के पौत्र थे। यमुनाचार्य का जन्म मन्नारगुड़ी में नारायणपुर में हुआ था। इनका भी निवास श्रीरंगम था। यमुनाचार्य की प्रसिद्ध कृति सिद्धित्रय है तथा ये विशिष्टाद्वैत के संस्थापक थे। सिद्धित्रय का लेखन अविद्या सिद्धांत के विरोध में हुआ था। आगम प्रमाण में यमुनाचार्य ने शंकराचार्य के विचारों का विरोध किया तथा पांचरा सिद्धांत का समर्थन किया। गीतार्थ संग्रह में भक्ति मार्ग को प्रोत्साहित किया गया है तथा कर्म एवं ज्ञान योग को निम्न स्थान दिया गया है। इनकी अन्य कृतियां महापुरुष निर्णय तथा स्त्रोत रत्न है। रामानुजाचार्य का जन्म 1016 ईस्वी में चेन्नई के समीप श्री पेरुम्बदूर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी मृत्यु 1137 में श्रीरंगम में हुई थी। ये यादव प्रकाश नामक गुरु के द्वारा शिक्षित किए गए थे। अद्वैत दर्शन से असंतुष्ट होने के कारण नालिया प्रबंधम का अध्ययन किया। यमुनाचार्य के पश्चात श्री रंगम के अध्यक्ष बने। उन्होंने विशिष्टाद्वैत का प्रतिपादन किया और कोलुतुंग के द्वारा सताए जाने पर होयसल नरेश विट्ठित देव या विष्णुवर्धन के साथ शरण ली। रामानुजाचार्य की प्रमुख कृतियां वेदांत सार, वेदांत संग्रह, श्री भाष्य, गीता भाष्य, वेदांत दीप आदि हैं। कुरुकेश या रामानुज का उत्तराधिकारी था तथा भटकले संप्रदाय का संस्थापक था। विष्णुचित्त, इन्हें एंगल आलवार भी कहा गया है। इनकी प्रमुख कृतियां सलाथ चतुष्टय विष्णुचित्तियम हैं। वरदाचार्य, इन्हें नांडाटूर अम्माल नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1155 ईस्वी में काचीपुरम को वटकले श्री वैष्णव संप्रदाय का केंद्र बनाया। तत्वसार इनकी प्रमुख रचना है। वेदांत देशिक, वैष्णव धर्म के इतिहास में रामानुज के पश्चात दूसरा महान व्यक्ति वेदांत देशिक है। इसकी प्रमुख उपाधियां कविताकृति क्रम सिमह, सर्वतंत्र सर्वतंत्र, वेदाचार्य आदि हैं। इनकी प्रमुख रचना यादवाभ्युदय, तत्पर चंद्रिका, शिवेश्वर मीमांसा, तत्वटीका, मीमांसा पादुका, तत्वमुक्ताकलाप, सतुदुष्णी, सर्वार्थ सिद्धि, न्याय विद्वाजन, नवरान माले, अर्थम पांचाक्रम आदि है। वेदांत दैशिक भी वटकले श्री वैष्णव आचार्य था। एम्बार, तैनकले श्री वैष्णव आचार्य है। इन्हें रामानुज का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है, लेकिन इसकी मृत्यु रामानुज के काल में ही हो गई थी। पराशर भट्ट, रामानुज का तैनकले श्री वैष्णव संप्रदाय का उत्तराधिकारी था। इसकी प्रमुख कृति सहस्त्रान नाम भाष्य है। कृष्णपाद, इसे वड्डुकुत्तीरु विधि पिल्ले कहा गया है। इंडू के शिक्षक से प्रबंधों पर टीका लिखी थी, जिसे तैनकले संप्रदाय के अध्ययन के लिए अनिवार्य विषय स्वीकार कर लिया गया था। पिल्ले लोकाचार्य, यह 13वीं शताब्दी में जन्मा था। कृष्णपाद का पुत्र तथा उत्तराधिकारी था। यह नांडुदूर अम्माल का शिष्य था तथा तैनकले संप्रदाय का वास्तविक संस्थापक था। इसकी कृतियां वचन भूषण, आचार्य हृदय, तत्व विवेक आदि है। मणवाल महामुनि, इनका जन्म 1370 ईस्वी में हुआ था। इनकी कृतियां तत्वत्रय, रहस्यत्रय, श्री वचन भूषण, ज्ञानसार, प्रमेयसार आदि है। दक्षिण भारत में आलवर तथा आचार्य आंदोलन के अतिरिक्त एक अन्य महत्वपूर्ण आंदोलन वैखानस था। यहाँ पर इसके प्रवर्तक वैखानस नामक ऋषि माने जाते हैं। परंपरा के अनुसार कृष्ण भक्ति के आर्च स्वरूप को स्थापित करने के लिए वैखानस ने अवतार लिया था। विष्णु संहिता में पांचरात के पक्ष में सत्वत, एकांतिक तथा मूल के साथ वैखानस का भी नाम आया है। वैष्णव साहित्य में कुलोत्तुंग दिति को कुमिकट्ठ चोल कहा गया है, क्योंकि वैष्णव धर्म का विरोधी तथा चिदंबरम से विष्णु की मूर्ति समुद्र में फेंक दी थी। अधिराजेंद्र को भी कृतिमकंठ कहा गया है, क्योंकि इसने रामानुज को आतंकित किया था। कुछ विद्वान इन्हें प्रताड़ित करने वाले शासक का नाम वीर राजेंद्र अथवा कुलोत्तुंग प्रथम मानते हैं। कुलोत्तुंग द्वितीय ने कंबन, ओटकुटन तथा शेक्किलार को संरक्षित किया। कंबन ने तमिल रामायण कुलोत्तुंग द्वितीय के काल में रचित की थी। भक्ति आंदोलन, भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख चेतासूत्र उपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक युग में शक्तियों का दैवीकरण हुआ तथा देवताओं का मानवीकरण प्रारंभ हो गया। मानवीकरण ने अवतारवाद को जन्म दिया। वैदिक भक्ति परंपरा के समानांतर दक्षिण भारत में द्रविड़ संस्कृति का विकास हुआ। यहीं पर आलवर एवं आचार्य परंपरा का उदय हुआ। यहीं से भक्ति कालांतर में दक्षिण आचार्य द्वारा उत्तर में लोकप्रिय बनी। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया। शंकराचार्य का जन्म 785 ईस्वी में केरल के कलादी नामक ग्राम में नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। शंकर ने पंचस्मृति की पूजा प्रारंभ की। शंकर ने ब्रह्म सूत्र भाष्य, उपनिषद भाष्य, विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य, सुसुजाति भाष्य, मांडुक्य कारिका भाष्य, आत्मबोध उपदेश शास्त्री, अपरोक्षानुमति, पंचीकरण प्रकरण, विवेक चूड़ामणि, मनीषा पंचम, आनंद लहरी स्त्रोत, प्रपंच सारतंत्र आदि की रचना की। शंकराचार्य ने कुमारिल भट्ट से भी भेंट की तथा उनके शिष्य मंडन मिष्ट एवं उनकी पत्नी उभय भारती को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। मंडन तथा भारती शंकर के शिष्य हो गए थे। मंडन को शंकराचार्य ने श्रृंगेरी का आचार्य नियुक्त किया था। शंकराचार्य के समकालीन भास्कराचार्य थे, जिन्होंने भेदाभेद एवं ज्ञानक्रम समुच्चयवाद की स्थापना की थी। 32 वर्ष की आयु में 820 ईस्वी में शंकर का स्वर्गवास हो गया। शंकराचार्य ने निषदों पर अपना भाष्य प्रस्थान त्रय लिखा तथा अद्वैतवाद की स्थापना की। भारत के चारों कोनों में चार मठों की स्थापना की। उत्तर में बद्धिकाश्रम में ज्योतिर्मठ, दक्षिण में श्रृंगेरी पीठ, पूर्व में जगन्नाथपुरी में गोवर्धन मठ, पश्चिम में द्वारिकापुरी में शारदा मठ। वैष्णव धर्म की प्रमुखता रामानुजाचार्य के स्थापित परंपरा से आगे बढ़ी। रामानुजाचार्य का जन्म आंध्र प्रदेश के तिरुपति में 1017 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में रामानुजाचार्य ने गृहस्थ जीवन व्यतीत किया था। रामानुज ने विशिष्टाद्वैत या श्री संप्रदाय की स्थापना की। इनके अनुसार ब्रह्म जीवन एवं जगत में एक विशिष्ट संबंध है तथा तीनों सत्य हैं। जीव एवं जगत का केंद्रीभूत तत्व ईश्वर है। रामानुज के समकालीन निंबिकाचार्य का जन्म 1130 ईस्वी में बेलारी में हुआ था। निंबिकाचार्य ने शंकर के अद्वैतवादी दर्शन का खंडन किया तथा द्वैतवाद एवं अद्वैतवाद दोनों सिद्धांतों के मिश्रण के फलस्वरूप द्वैतवाद वेद का प्रतिपादन किया। इनके अनुसार ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, सगुण ब्रह्म ही ईश्वर है। जीव एवं जगत ईश्वर पर आश्रित होने के कारण अभिन्न है, किंतु स्वरूप की दृष्टि से वे भिन्न है। निंबिकाचार्य ने कृष्ण को आराध्य देव माना तथा राधा की भी पूजा की। उनके अनुसार राधा कृष्ण की भक्ति से ही मोक्ष संभव है। वे वृंदावन में रहे, जहाँ से राधा एवं कृष्ण की भक्ति उत्तरी भारत एवं बंगाल में फैली। इनकी कृति वेदांत पारिजात सौरभ है। रामानुज एवं निंबिकाचार्य के पश्चात माध्वाचार्य ने विष्णु भक्ति को आगे बढ़ाया। इनका जन्म 1197 ईस्वी में दक्षिण कन्नाड़ा जिले के उड़पी के कल्याणपुर नामक स्थान पर हुआ था। माधव ने द्वैतवाद का प्रतिपादन किया तथा विशिष्टता द्वैतवाद एवं अद्वैतवाद का खंडन किया। इनके अनुसार ईश्वर एवं जगत दोनों सत्य है तथा विष्णु ही ईश्वर है। इनका संप्रदाय ब्रह्म या स्वतंत्रता स्वतंत्रवाद के नाम से प्रसिद्ध है। माध्वाचार्य ने उड़ीसा में कृष्ण मंदिर का निर्माण कराया तथा उसने अपने अनुयायियों का केंद्र बनाया। माध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय आनंद तीर्थ पूर्व यज्ञ मध्वंदार भी कहलाता है। रामानुज के शिष्य रामानंद भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत लेकर आए, जिसके लिए उन्हें दक्षिण एवं उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के मध्य सेतु माना जाता है। उत्तर भक्ति विचारधारा की मुख्य विशेषताएं निम्न थी। पहला, भक्ति आंदोलन में उपासना की विधियों में कर्मकांडों तथा यज्ञों का परित्याग किया तथा ईश्वर के अनुभूति के सरल मार्ग के रूप में मानवतावाद पर बल दिया गया। इसमें पुरोहित वर्ग की प्रमुखता एवं कर्मकांड की निंदा की गई। व्यक्तिगत प्रयास एवं निष्ठा से ईश्वर की अनुभूति प्राप्त करने हेतु मार्ग प्रशस्त किया गया। दूसरा, भक्ति आंदोलन एकेश्वरवादी पंथ था। भक्त एक ही ईश्वर की उपासना करते थे, या सगुण भी हो सकता है एवं निगुण भी। सगुण उपासकों दो भागों में भक्त थे, राम मार्गी एवं कृष्ण मार्गी। निर्गुण मतानुयायी मूर्ति पूजा को नहीं स्वीकारते थे। तीसरा, दार्शनिक दृष्टि से सगुण एवं निर्गुण दोनों विचारधाराओं उपनिषद के अद्वैत दर्शन पर आधारित थी। इनमें भक्ति का भिन्न भेद सुझाए गए थे, या ज्ञान सच्चे गुरु के द्वारा ही संभव था। चौथा, उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन ब्रह्म ज्ञान के गुण प्रसंगों पर आधारित नहीं था। वस्तुतः उनके विचार एवं दृष्टिकोण उदार एवं सिद्धांत निरपेक्ष थे। इस आंदोलन में जाति का कोई स्थान नहीं था। बहुत से संतों का उदय निम्न जातियों में हुआ था तथा उनका संदेश धनी निर्धन उच्च एवं निम्न वर्ग में सद्भाव से प्रचलित था। पांचवा, भक्ति आंदोलन के अनुपम देव इनकी शिक्षा में बड़े समन्वय की भावना है। इनका चिंतन उत्तर के योग तथा दक्षिण के पूर्ण संपन्न समन्वय था। भक्ति संतों में वह सब कुछ अस्वीकार किया जो अवास्तविक क्षणिक जड़ एवं सांप्रदायिक था। इस भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत निम्न हैं: रामानंद। रामानंद का जन्म 1299 ईस्वी में प्रयाग में हुआ था। रामानंद ने काशी को अपनी भक्ति का प्रमुख केंद्र बनाया था। रामानंद ने किसी जन्म, जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव के बिना सभी जातियों के लिए भक्ति के द्वार खोल दिए। रामानंद ने हिंदी भाषा को उपदेश का माध्यम बनाया, जिससे भक्ति संदेश जनमानस तक पहुंच सके तथा सभी धार्मिक संप्रदायों के विचार ग्रहण किए। उन्हें अपने हृदय के प्रेम तथा भक्ति के जीवंत बनाया तथा आध्यात्मिक अनुभूति के नवीन पथ का निर्माण किया। रामानंद ने राम के नाम का प्रयोग किया। उनका ईश्वर प्रेम युक्त एवं दयामय है, यह निर्विकार है तथा केवल वेदांत का शाश्वत ब्रह्म ही नहीं बल्कि व्यक्ति के हृदय का प्रेमी, मित्र एवं स्वामी है। रामानंद के 12 शिष्य प्रमुख थे: अनंतानंद, कबीर, पीपा, भावनानंद, सुखा, सुरसुर, सुरसुर की पत्नी पद्मावती, नरहरिदास, रैदास, धन्ना एवं सेन। इनके उच्च एवं निम्न दोनों जातियों के संत थे: भावानंद, सुखानंद, आशानंद, परमानंद, महानंद एवं श्रीमानंद। ब्राह्मण थे। कबीर, रैदास, धन्ना, सेना, सदन, पीपा आदि जातियों के थे। रामानंद की भक्ति विशिष्टाद्वैत पर आधारित थी। कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। माता ने नवजात शिशु को वाराणसी के लहरतारा नामक स्थान पर त्याग दिया, जिससे नीरू नामक जुलाहे तथा उसकी पत्नी नीमा ने पाला। नए माता पिता के बालक का नाम कबीर रखा, जिसका अर्थ महान होता है। कबीर जाति पाती के झगड़े से सर्वदा अलग थे। गुरु रामानंद की कृपा से उन्होंने अपने संस्कार को सृजनात्मक क्रिया की ओर उन्मुख किया तथा हिंदू धर्म एवं सूफी सिद्धांतों को अपने में आत्मसात किया। कबीर की विचारधारा शुद्ध अद्वैतवादी थी तथा वह निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। कबीर ने मन के संयम पर अधिक बल दिया तथा इंद्रिय विषय को नष्ट करने की बात कही। कबीर की रचनाएं बीचक, सबद, साखी, रमैनी, मंगल, बसंत होली, रेखाताल आदि हैं। कबीर की मृत्यु बस्ती जिले के मघर नामक स्थान पर आमी नदी के तट पर हुई थी। कबीर के प्रमुख शिष्य कमाल, कमाली, पद्मनाभ, ज्ञानाजी, जागुदास, भगोदास, सुरती गोपाल एवं धर्मदास थे। कबीर की मृत्यु के पश्चात सुरती गोपाल तथा धर्मदास ने कबीर पद की स्थापना की। 14वीं शताब्दी तक कबीर विचारधारा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा आदि में राम कबीर पंथ, फतेह मठ, विद्यप्पर मठ, भगता की शाखा, कबीर चौरा, छत्तीसगढ़ी सखा आदि रूप में विस्तृत हो गई। कबीर ने गृहस्थ का जीवन व्यतीत किया। उनकी पत्नी का नाम लोई था। उनका पुत्र कमाल उनका शिष्य था। उनकी मृत्यु के बाद उनके मुस्लिम भक्तों ने दरगाह बनवाई, जबकि श्रुति गोपाल ने वाराणसी में एक नए पथ की स्थापना की थी। बीजक कबीर भक्तों का सबसे प्रमुख ग्रंथ है, जिसमें कबीर के मुख्य दोहे संकलित हैं। तुलसीदास, तुलसीदास का जन्म 1589 ईस्वी में रामापुर बांदा में एक ब्राह्मण के परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम तथा माता तुलसी थी। अपनी पत्नी रत्नावली, जो दीनबंधु पाठक की पुत्री थी, के व्यंग कटाक्ष से आहत होकर वे ईश्वर भक्ति की ओर अग्रसर हुए। तुलसीदास ने अवधि भाषा में रामचरितमानस लिखकर राम भक्ति को जन आंदोलन बना दिया। वे राम को ईश्वर का अवतार मानते थे, जिनकी प्राप्ति केवल भक्ति के द्वारा संभव है। तुलसीदास ने कुल 12 ग्रंथों की रचना की थी। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामललानंद, जानकी मंगल, रामाज्ञा प्रश्न, वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, बरवैया रामायण। तुलसीदास ने अपनी कृतियों में अवधि, ब्रजभाषा, भोजपुरी, अरबी, संस्कृत तथा फारसी शब्दों का प्रयोग किया है। सूरदास, सूरदास का काल 15वीं-16वीं शताब्दी माना जाता है। ये कृष्ण एवं राधा के भक्त थे। सूरदास के अनुसार मुक्ति का माध्यम केवल कृष्ण ही हो सकते हैं। इनकी ब्रजभाषा में लिखे 3 ग्रंथ सुरसरावली, सुरसागर एवं साहित्य लहरी प्रमुख है। मान्यता है कि सुरसागर में 1,25,000 पद थे, परंतु कुछ ही हजार प्राप्त है। सूरदास ने कृष्ण के बाल रूप में भक्ति का समन्वय किया है। इनकी कृतियां बाल मनोविज्ञान ही अनुपम देव मानी जाती हैं। परंपरा के अनुसार ये जन्म से ही अंधे थे, परंतु बाल लीला का इतना अद्भुत वर्णन बिना बालक की चंचलता को देखे बिना प्रतीत नहीं होता है। सूरदास को बल्लवाचार्य का समकालीन माना गया है तथा वे बल्लभ संप्रदाय से संबंधित भी हैं। बल्लभाचार्य का जन्म 1469 ईस्वी में चंपारण वाराणसी में हुआ था। इनके पिता लक्ष्मण भट्ट तथा माता यल्लमगरु तैलंग ब्राह्मण थे तथा काशी में बस गए थे। बल्लभ वैष्णव संप्रदाय के कृष्ण भक्ति शाखा के महान संत थे। वे कुछ समय काशी, मथुरा एवं वृंदावन में रहे तथा तेलंगाना में विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का भी संरक्षण प्राप्त किया था। बल्लभाचार्य ने वृंदावन को अपना निवास बनाकर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। उन्होंने पुष्टिमार का प्रवर्तन किया तथा उसे कृष्ण रूपी श्रीनाथ जी से संबद्ध किया। उनका वेदांत सिद्धांत उनके पूर्ववर्ती विष्णु स्वामी के सिद्धांत के अनुरूप था। बल्लभ के अनुसार कर्म एवं ज्ञान दोनों अत्यंत कठिन है, केवल भक्ति का साधन सरल एवं सुबोध है, जिसके माध्यम से व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर सकता है। बल्लभाचार्य ने भक्ति के 4 प्रकार बताए हैं। पहला, प्रवाह पुष्टि भक्ति, मर्यादा पुष्टि भक्ति, पुष्टि पुष्टि भक्ति, शुद्ध पुष्टि भक्ति। प्रवाह पुष्टि भक्ति के अंतर्गत वे लोग हैं जो सांसारिक माया में आबद्ध होकर भक्ति करते हैं। मर्यादा पुष्टि वे अपनाते हैं जो सांसारिक सुखों से अपने मन को हटाकर भगवान के पूजन अर्चन में अपना समय व्यतीत करते हैं। पुष्टि पुष्टि भक्ति को मानने वाले भगवान की कृपा का अनुभव करते हुए पुनः अनुग्रह प्राप्त कर ज्ञान पाते हैं। शुद्धि पुष्टि भक्ति में लोग मात्र प्रेम के आधार पर भगवान की आराधना करते हैं। बल्लभ के अनुसार ब्रह्म सृष्टि का कर्ता है, वह जगत के कण कण में निहित है तथा सभी वस्तुएं उसी का रूप हैं। आत्मा भी उसी का अंश है, दोनों ही अभिन्न हैं, दोनों ही अविकृत हैं, यह शुद्धाद्वैत कहा जाता है। बल्लभ ने जाति व्यवस्था के गुण एवं कर्म के आधार पर स्वीकार किया। जन्म के आधार पर नहीं, शूद्रों को वे निम्न नहीं मानते थे। स्त्री एवं पुरुष में भी वे कोई भेद नहीं करते थे। उनके अनुसार दोनों में निवास करने वाली आत्मा समान है। बल्लभाचार्य ने अष्टछाप के नाम से 8 भक्ति कवियों को लीला गान करने की अनुमति प्रदान की। ये कवि निम्न थे: सूरदास, नंददास, परमानंद, कुंभनदास, चित्तस्वामी, चतुर्भुजदास, कृष्णदास तथा गोविंद स्वामी। बल्लभाचार्य ने शंकर के ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या के सिद्धांत का खंडन करते हुए जीव को उतना ही सत्य माना है जितना ब्रह्म। उनके अनुसार जीव ब्रह्म का ही एक अंश है, परंतु वह सेवक मात्र है। श्री कृष्ण ही वास्तविक ब्रह्म है। बल्लभ ने ब्रह्मपुत्र सूत्र एवं भाष्य अड़ु भाष्य के अतिरिक्त भागवत के 10 स्कंद एवं अन्य स्कंदों पर टीकाएं लिखी। बल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठलनाथ ने अष्टछाप कवियों को कृष्ण पर काव्य लिखने के लिए नियुक्त किया। उन्होंने राधा की भक्ति पर अधिक जोर दिया। गोपाल भट्ट के शिष्य हरिवंश ने राधा बल्लभ संप्रदाय की स्थापना की। उनमें राधा का स्थान कृष्ण से ऊंचा था। इस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर वृंदावन में स्थित राधा बल्लभ मंदिर है। वृंदावन में ही हरिदास स्वामी ने बांके बिहारी मंदिर का निर्माण किया। हरिदास स्वामी तानसेन के गुरु थे। मीराबाई। मीराबाई का जन्म 1499 ईस्वी में मेड़ता जिले के कुदवी ग्राम में रतन सिंह राठौर के यहाँ हुआ था। मीरा का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ, जो 1529 ईस्वी के बाबर के साथ खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ था। मीरा बचपन से ही धार्मिक थी तथा अपने पिता एवं पितामह की तरह कृष्ण की अनुयायी थी। पति की मृत्यु के उपरांत वे पूर्णतः धर्मपरायण जीवन व्यतीत करने लगी। कृष्ण की सच्ची भक्ति एवं धर्मपरायणता के कारण इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई, जिससे आकर्षित होकर दूर दूर से लोग इनसे ज्ञान प्राप्ति हेतु चित्तौड़ आने लगे। मेवाड़ के शासकों को यह उचित नहीं लगता था, अतः ये अपने चाचा मेड़ता के प्रमुख विरम देव के साथ रहने लगी। यहाँ ये धार्मिक चिंतन, संगीत एवं नृत्य में तल्लीन रहने लगी। जब मेड़ता पर जोधपुर के मालदेव ने अधिकार कर लिया, तब मीरा ने द्वारका की ओर प्रस्थान किया। द्वारका में ही मीरा का 1546 ईस्वी में निधन हुआ। मीरा ने भक्ति परक गीत मुख्यतः ब्रजभाषा, राजस्थानी तथा आंशिक रूप से गुजराती में लिखे हैं। इन्हें मीरा के पद की संज्ञा दी जाती है। कृष्ण को समर्पित ये गीत भावावेश एवं आध्यात्मिक परमानंद से युक्त हैं। नानक देव। नानक देव का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी में हुआ था। पिता का नाम कालूचंद तथा माता का नाम तृप्ता था। नानक एक शिक्षित संत थे। उन्होंने मातृभाषा पंजाबी के अतिरिक्त फारसी एवं हिंदी का भी अध्ययन किया था तथा मदीना, बगदाद, काबुल, कश्मीर एवं सिंहद्वीप की यात्रा की थी। सैयद हुसैन नामक मुस्लिम ने इन्हें इस्लाम धर्म के सुन्नी मत की शिक्षा दी थी। गुरु नानक की शिक्षाएं एकेश्वरवाद पर आधारित थी। उन्होंने निराकार ईश्वर की कल्पना की तथा इस निराकार ईश्वर को अकाल पुरुष की संज्ञा दी थी। नानक धार्मिक एवं सामाजिक अंधविश्वासों के भयंकर विरोधी थे तथा हिंदू एवं मुस्लिम दोनों के अंधविश्वासों एवं रूढ़िवाद की घोर निंदा की थी। नानक ने अपने प्रार्थना में ईश्वर, राम, गोविंद, हरि, मुरारी एवं रहीम का प्रयोग किया। नानक द्वारा रचित पद आदि ग्रंथ में संकलित है। नानक ने गुरु का लंगर नाम से सामुदायिक रसोई का प्रारंभ किया, जिसके अनुयायी बिना किसी जाति भेदभाव के एक साथ भोजन करते थे। नानक ने अवतारवाद में विश्वास नहीं किया था। उनके अनुसार सत्य की खोज करने वाले व्यक्ति का प्राथमिक कर्तव्य ईश्वर का स्मरण है। उनकी ईश्वर की भक्ति की पद्धति सिमरन कहलाती है। नानक के पुत्र श्री चंद ने उदासी संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। नानक ने कुछ समय तक दौलत खान लोधी के यहाँ नौकरी भी की थी। 1538 ईस्वी में नानक का करतारपुर में निधन हो गया। रैदास। रैदास का काल 15वीं शताब्दी माना जाता है। ये रामानंद के शिष्य थे एवं जन्म से मोची का कार्य करते थे। रैदास के अनुसार परमात्मा अपने भक्तों के हृदय में निवास करता है तथा उसे किसी धार्मिक अनुष्ठान से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। उनका कथन था, जब मन चंगा तो कठौती में भी गंगा, अर्थात यदि मन शुद्ध है तो ईश्वर प्राप्ति हर स्थान पर संभव है। गुरु ग्रंथ साहिब में रैदास के 30 से अधिक भजन हैं तथा कबीर ने भी रैदास के प्रति श्रद्धा व्यक्त की है। मलुकदास। मलुकदास का जन्म 1574 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था। ये कबीर के अनुयायी थे। इन्हें लघु भक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। मलुक दास की रचनाएं रत्खान एवं ज्ञानबोध हैं। ये गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे। मलुक दास के मठ संपूर्ण उत्तर प्रदेश, बिहार एवं अफगानिस्तान तक विस्तृत थे। इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया तथा यह उपदेश दिया कि अनुयायी अपनी मुक्ति के लिए पूरी तरह ईश्वर की कृपा पर निर्भर होते हैं। दादू दयाल। दादू का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में ब्राह्मण परिवार में हुआ था तथा मृत्यु 1603 ईस्वी में राजस्थान के नौरा या नारायणा नामक स्थान पर हुई, जो उनके अनुयायियों का प्रमुख केंद्र है। दादू ने प्रेम एवं बंधुत्व के प्रचार हेतु ब्रह्म संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। दादू ने धर्म ग्रंथों की अपेक्षा आत्मज्ञान को महत्व दिया। आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु मनुष्य को अहम की भावना से मुक्त कर देना चाहिए। दादू के अनुरोध पर इनके शिष्यों ने विभिन्न संप्रदायों की भक्ति परक रचनाओं को संकलित किया। इस संकलन में मुस्लिम संतों काजी कदम, शेख फरीद, काजी मोहम्मद, शेख बहावत तथा बखना की रचनाओं को स्थान मिला। दादू के शिष्यों में सुंदरदास एवं रंजन अत्यंत प्रसिद्ध थे। रंजन ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था। उनके अनुसार यह संसार वेद है, यह सृष्टि कुरान है। नरसिंह मेहता। नरसिंह या नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी में गुजरात के एक प्रसिद्ध संत थे। उन्होंने राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण करते हुए गुजराती में रचना की थी। इनकी प्रसिद्ध रचना सुरतसग्राम है। महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन को तेने कहिए कि रचना नरसिंह मेहता ने ही की थी। जगजीवन। जगजीवन का काल 17वीं शताब्दी माना जाता है। जगजीवन ने सतनामी संप्रदाय की स्थापना की थी। वे आध्यात्मिक अनुभूति को केवल ईश्वर कृपा से संभव बताते हैं। इन्हें अछूत माना जाता था। सतनामी के नाम से एक अन्य संप्रदाय की स्थापना मोची जाति के घासी दास ने की थी। इस संप्रदाय के अनुयायी मांसाहार या मदिरा का स्पर्श नहीं करते थे। ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे तथा ब्राह्मण या अन्य जातियों की सृष्टा को नहीं मानते थे। तालबेंग। वे 17वीं शताब्दी में राजस्थान में जन्मे थे। इन्हें लालगिर भी कहा जाता है। लालबेंग ने अलखनामी या अलखगिर संप्रदाय की स्थापना की थी। बीकानेर क्षेत्र में इनका व्यापक प्रभाव था। वे परलोक की चिंता नहीं करते थे तथा अलख कहो शब्द से एक दूसरे का स्वागत करते थे। वे उच्च जातियों की सर्वश्रेष्ठता को नहीं स्वीकारते हैं। दरिया साहेब। दरिया साहेब का जन्म 17वीं शताब्दी में उज्जैन में एक क्षत्रिय परिवार में हुआ था। उनके उपदेशों पर कबीर का गहरा प्रभाव था। उनके अनुयायी खड़ी मुद्रा में कॉर्निश में प्रार्थना करते थे या मुस्लिम प्रार्थना की तरह है, जबकि बैठकर इनकी प्रार्थनाएं सजदा कहलाती हैं। इस संप्रदाय में प्रतिमाओं, अवतारों की पूजा, जाति भेदभाव, मांस या मदिरा का सेवन करना निषिद्ध किया गया है। एक अन्य दरिया साहब का जन्म मारवाड़ में मुस्लिम परिवार में हुआ था। कुछ लोग इन्हें दादू का अवतार मानते हैं। शिवनारायण। शिवनारायण का जन्म 1710 में बलिया जिले के एक राजपूत परिवार में हुआ था। ये केशरवादी थे तथा मूर्ति पूजा के विरोधी थे। यह संप्रदाय सभी जातियों के लिए खुला था। शिवनारायण दारासिकों की शिक्षाओं से प्रभावित थे तथा इनके दर्शन में हिंदू तथा इस्लामी दोनों की धार्मिक परंपराओं का उल्लेख मिलता है। एक अनुश्रुति के अनुसार मुहम्मद शाह इस संप्रदाय का मानने वाला था। वलीउल्लाह, अब्बू तथा नाजी जैसे कवियों ने शिवनारायण के शिक्षाओं के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की है। कुतुबन। कुतुबन शेख बहरुनुद्दीन के शिष्य थे तथा सुल्तान हुसैन शाह सरकी पर आश्रित थे। कुतुबन ने हिंदी साहित्य का प्रथम प्रेम ग्रंथ मिग्रावती लिखा। इसमें प्रेम को इश्क के खुदा के रूप में वर्णित किया गया है। इसी के समकालीन मंझन ने मधुमालती नामक प्रेम काव्य की रचना की। मलिक मोहम्मद जायसी ने कृष्ण भक्ति के आधार पर पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम की रचना की। केशवदास ने रामचंद्र का कवि प्रिया, रसिक प्रिया, वीर सिंह देवचरित्र, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका नादी की रचना की। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन। महाराष्ट्र का भक्ति आंदोलन पड़पुर के मुख्य देवता विठोबा या विठल के मंदिर के चारों ओर केंद्रित था। विठोबा को कृष्ण का अवतार माना जाता है। सामाजिक रूप से यह अधिक गुड़ एकात्मक तथा सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में अत्यधिक उदारवादी आंदोलन था। महाराष्ट्र में यह दो संप्रदायों में विभक्त था। पहला वारकरी संप्रदाय पड़पुर के विठल भगवान के सौम्य भक्तों का संप्रदाय था। यह रहस्यवादी थे। यह संप्रदाय भावुक, सैद्धांतिक एवं अमूर्त दृष्टिकोण से युक्त हैं। दूसरा धरकरी संप्रदाय इसके अनुयायी भगवान राम के भक्त हैं तथा अपने को रामदास अभिहित करते हैं। यह संप्रदाय आर्थिक तार्किक तथा मूल विचारों से युक्त है। ज्ञानदेव तुकाराम तथा एकनाथ विठोबा संप्रदाय के तीन प्रमुख महापुरुष थे। निवृत्ति अनाथ तथा ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी संप्रदाय के संस्थापक थे। महाराष्ट्र के प्रमुख भक्ति संत निम्न हैं। ज्ञानेश्वर या ज्ञानदेव का काल 1275 ईस्वी माना जाता है। ये महाराष्ट्र के प्रारंभिक भक्ति संत थे। इन्होंने मराठी भाषा में गीता पर ज्ञानेश्वरी या भावार्थ दीपिका नामक टीका लिखी थी। ज्ञानदेव की अन्य रचनाएं अमृता अनुभव तथा चंगदेव प्रशस्ति है। परंपरा के अनुसार ज्ञानदेव ने भैंसे के मुख से वेद मंत्रोच्चारण करवा लिया था। अलिंदी इनका प्रमुख स्थान था। नामदेव का जन्म 1270 ईस्वी में एक दर्जी के परिवार में हुआ था। नामदेव ने अपनी युवावस्था में डाकू जीवन व्यतीत किया था तथा एक बार 84 सैनिकों की हत्या कर दी थी। एक बार अपने द्वारा पीड़ित एक व्यक्ति की असहाय पत्नी की चीख सुनने के बाद उसका हृदय परिवर्तित हो गया। उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन का अधिकांश समय पड़पुर में बिताया। विशोबा खेचर ने इन्हें रहस्यवाद की शिक्षा दी तथा ईश्वर के सर्वव्यापी स्वरूप का मार्ग दिखाया। वे बरकरी संप्रदाय के संस्थापक के रूप में स्थापित हुए। नामदेव ने ज्ञानेश्वर के साथ यात्राएं की। इनकी शिक्षाएं गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित हैं। नामदेव की मराठी में भक्ति परक रचना अभंग कहलाती है। इनके प्रमुख शिष्य गोरा संवत सेना तथा चोखा थे। एकनाथ का जन्म औरंगाबाद में 1533 ईस्वी में पैठर नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने सभी जातियों को समान माना। वे कहार लोगों के साथ भोजन करते थे। एकनाथ शिवाजी के समकालीन थे। एकनाथ ने चतुश्लोक की भागवत भावार्थ रामायण हरिपाठ नामक ग्रंथों की रचना की। एकनाथ ने प्रथम बार ज्ञानेश्वरी का विश्वसनीय संस्करण प्रस्तुत किया। एकनाथ ने वेदांत दर्शन तथा पूर्ववर्ती संतों की रहस्यवादी शिक्षाओं को जनसामान्य की भाषा में प्रस्तुत किया। एकनाथ अत्यधिक सहृदय थे। एक बार प्रभु पूजा के लिए गोदावरी से लाए गए पवित्र जल को उन्होंने गधे के कंठ में उड़ेल दिया जो प्यास से मर रहा था। 1598 ईस्वी में एकनाथ की मृत्यु हो गई। तुकाराम का जन्म एक संबद्ध कृषक परिवार में हुआ था। ये शूद्र जाति के थे। एक भयानक दुर्भिक्ष में तुकाराम ने अपने माता पिता दो पत्नियों में से एक तथा एक बच्चे को खो दिया। दूसरी पत्नी के कर्कशा होने के कारण इनका गृहस्थ जीवन से मोह भंग हो गया। इसके पश्चात तुकाराम ने ज्ञानेश्वर नामदेव तथा एकनाथ की रचनाओं का अध्ययन किया तथा बामहानाथ एवं भंडारा की पहाड़ियों के निर्जन स्थानों में रहकर ईश्वर का चिंतन करने लगे। इन्होंने अभंग शैली में कई हजार पदों की रचना की थी। इन्होंने शिवाजी के निमंत्रण को नकार दिया था। इनका प्रमुख केंद्र पूना के निकट देहू था। रामदास का जन्म 1608 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम नारायण था। रामदास ने 12 वर्षों तक समस्त भारत का भ्रमण किया तथा कृष्णा नदी के तट पर चौफाल के समीप एक मंदिर का निर्माण कर निवास करने लगे तथा रामदासी संप्रदाय की स्थापना की जिसका मुख्यालय सतारा में सज्जनगढ़ में था। यह व्यवहारिक प्रकृति के संत थे। अपने आध्यात्मिक एवं लौकिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए संपूर्ण महाराष्ट्र में रामदास ने अपने मठों की स्थापना तथा दासबोध की रचना की। महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन में रामदास का महानतम योगदान महाराष्ट्र के लोगों का एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करना था, जिसे शिवाजी के नेतृत्व में मराठा आंदोलन के उत्थान में अत्यधिक सहायता प्राप्त हुई। यह शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। महानुभाव पंथ की रचना महाराष्ट्र में जाति प्रथा के विरोध, वेदों की शिक्षाओं के प्रति अविश्वास तथा आश्रम व्यवस्था के विरोध के आधार पर हुआ था। इस पंथ के प्रचारकों को राज्य के कठोर प्रतिबंधों के अधीन अपना आध्यात्मिक प्रचार करना पड़ा। गोविंद प्रभु इस पंथ के संस्थापक थे तथा चक्रधर इसके प्रथम धर्म प्रचारक थे। नागदेव भास्कर, केशवराज जसूरी, दामोदर विश्वनाथ तथा नारायण पंडित आदि इनके प्रमुख संत थे। ये कृष्ण एवं दत्तात्रेय अनुयायी थे तथा गीता एवं सूत्रपथ को धार्मिक ग्रंथ मानते थे। इनका प्रमुख साहित्य केशवावृत, चक्रधर सिद्धांत सूत्र, महाइम भट्टकृत, लीलाचरित, दामोदर कृत, वच्छहरण, नरेंद्र कृत, रुक्मिणी स्वयंवर, भास्कर भट्टकृत, उद्धव गीता तथा कवित्री मदाइस्कृत डवले आदि है। बंगाल, उड़ीसा तथा असम में वैष्णव धर्म। चैतन्य चैतन्य का जन्म 1486 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के नवद्वीप या नदिया नामक स्थान पर हुआ था। चैतन्य का मूल नाम विशंबर था तथा उपनाम निमाई था। चैतन्य सिलहट के एक ब्राह्मण परिवार के थे। चैतन्य ने ईश्वरपुरी से गया में कृष्ण मंत्र प्राप्त किया तथा केशव भारती के द्वारा सन्यासी की दीक्षा प्राप्त की। चैतन्य को बंगाल में गौड़ी वैष्णव धर्म का संस्थापक माना जाता है। चैतन्य ने संपूर्ण बंगाल तथा उड़ीसा में वैष्णव धर्म को प्रचलित किया। इन्होंने 15 वर्ष की आयु में ही गंगादास से शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात उन्हें विद्यासागर की उपाधि प्रदान की गई। चैतन्य की पहली पत्नी का नाम लक्ष्मी था। उनकी सांप के काटने से मृत्यु हो गई थी। उनका दूसरा विवाह भी हुआ था। सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन के शासनकाल में इन्होंने बंगाल तथा उड़ीसा में वैष्णव धर्म का प्रचार किया। उड़ीसा के शासक प्रताप रुद्र गजपति इनके शिष्य थे। इनके संरक्षण में ये स्थायी रूप से पुरी में बस गए, जहां 1533 में इनकी मृत्यु हो गई। चैतन्य की भक्ति राधा कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम पर आधारित थी तथा कृष्ण लीला पर बल देती थी। चैतन्य तेज ध्वनि के साथ संगीत में प्रार्थना का प्रारंभ किया, जिसे कीर्तन कहा गया। चैतन्य के भक्त इनको कृष्ण का अवतार मानते हैं। चैतन्य का दर्शन अचिंत्य भेदाभेद कहलाता है। चैतन्य की जीवनी उनके भक्त कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरणामृत के रूप में लिखा। चैतन्य के प्रमुख शिष्य अद्वैत एवं नित्यानंद थे। हरिदास उनका मुसलमान भक्त था। चैतन्य के गौड़ी धर्म पर आधारित कुछ संप्रदायों का ही जन्म हुआ। इनमें से कुछ प्रमुख हैं: गडाहाती संप्रदाय संस्थापक नरोत्तम ठाकुर, सखी भाव संप्रदाय संस्थापक अद्वैत की पत्नी सीता ठाकुरानी, अधिबड़ी संप्रदाय संस्थापक जगन्नाथ दास, बाउल संप्रदाय संस्थापक हरिदास। असम के कूच विहार में वैष्णव धर्म की स्थापना शंकरदेव ने की थी। शंकरदेव का जन्म 1449 में हुआ था। यह कायस्थ परिवार के थे। अहोम शासक चुमुंग के द्वारा पीड़ित किए जाने के पश्चात उन्होंने कूच विहार के शासक राजा नंद नारायण के पास शरण ली। शंकरदेव के द्वारा स्थापित संप्रदाय एक शरण संप्रदाय कहा जाता है, जो विष्णु या कृष्ण के पूर्ण भक्ति पर आधारित था। शंकर ने प्रमुख देवियों लक्ष्मी, राधा, सीता आदि को मान्यता नहीं प्रदान की तथा निष्काम भक्ति पर बल दिया। ये निर्गुण उपासक थे तथा मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। मोक्ष प्राप्ति जीवन का प्रमुख लक्ष्य था, जिसके लिए रामकृष्ण का जाप करते थे। इसे महापुरुषिया संप्रदाय भी कहा जाता है। संप्रदाय के मुख्य स्थान पर गीता को श्रद्धापूर्वक प्रतिष्ठित किया जाता था। माधव देव द्वारा रचित नाम घोष इसका प्रमुख ग्रंथ है। शंकर अकेले ऐसे वैष्णव मार्गी संत थे जिन्होंने मूर्ति के रूप में कृष्ण पूजा को अनुचित माना था। असम के महानतम संत होने के कारण असम के चैतन्य के रूप में प्रसिद्ध है। शंकर देव के वैष्णव धर्म की प्रमुख शाखाएं निम्न है: ब्रह्मसहति या बामुनिया संप्रदाय संस्थापक दामोदर देव, मुआमारिया संप्रदाय संस्थापक अनिरुद्ध देव, ठाकुरिया संप्रदाय संस्थापक पुरुषोत्तम ठाकुर, कालसाहित्य संप्रदाय संस्थापक गोपाल देव हैं। वैष्णव साहित्य विष्णु का प्रथम विवरण ऋग्वेद में है, जहां ये एक सूर्य देवता है। ब्राह्मण ग्रंथों में विष्णु एक महानतम देवता तथा यज्ञ के देवता हो गए। कठ उपनिषद ने मनुष्य के जीवन का चरम विष्णु के स्थान को प्राप्त करना है। मैत्रेय उपनिषद के अनुसार जो सृष्टि को चलाए वही भागवत विष्णु है। ऐत्रेय ब्राह्मण में विष्णु का स्थान सर्वोच्च है। तैत्रीय संहिता के अनुसार विष्णु ने वामन का अवतार धारण कर सृष्टि पर विजय पाई थी। 108 उपनिषदों में से कुछ उपनिषद केवल विष्णु को ही समर्पित है। इनकी उत्पत्ति बाद के काल की मानी जाती है तथा विष्णु उपनिषद कहलाते हैं। ये उपनिषद निम्न है: अव्योतोपनिषद, कालीन संतानोपनिषद, कृष्णोपनिषद, गरुड़ोपनिषद, गोपाल तपानी उपनिषद, गोपालोत्तरपानी उपनिषद, तारसरी उपनिषद, विपाद विभूति महानारायण उपनिषद, दत्तात्रेय उपनिषद, नारायणोपनिषद, नरसिंहात्तपानी उपनिषद, बरसिहोत्तर तापिनी उपनिषद, राम तापिनी उपनिषद, रामोत्तर तापिनी उपनिषद, राम रहस्य उपनिषद तथा वासुदेव उपनिषद आदि। वैष्णव धर्म के पांचराज संप्रदाय की प्राचीनता ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से जोड़ी जाती है। महाभारत के नारायणी संप्रदाय में इसका वर्णन प्राप्त होता है। यमुनाचार्य ने अपने आगम्य प्रमाण में पांचरात्र को वेदों की तरह प्राचीन माना है। नारायणी खंड में अवतारवाद का भी वर्णन प्राप्त होता है। इसमें अवतारों की संख्या 10 मानी गई है, लेकिन भागवत पुराण में विष्णु के अवतारों की संख्या अनगिनत मानी गई है। सत्वत संहिता पांचरात्र का सबसे प्रमुख साहित्य माना जाता है। सत्वत संहिता में यह वर्णित है कि विष्णु ने संकर्षण के अनुरोध पर पांचराज साहित्य की रचना की थी। इसमें विष्णु के चार व्यूहों की पूजा का विधिवत उल्लेख है। सत्वत पोष्कर, परमेश्वर तथा जायखय सबसे महत्वपूर्ण प्रारंभिक सत्वत साहित्य है। पांचरात पर लिखी गई टीकाओं में गोपाल सूरी कृत पांचरात रक्षा संग्रह है। महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत में वैष्णव भक्ति का अनुपम वर्णन है। रामायण के प्रथम एवं अंतिम खंडों में राम को विष्णु का अवतार माना गया है, लेकिन दूसरे से सात्विक खंडों में राम विष्णु के अवतार नहीं बल्कि एक मानव है। महाभारत को वैष्णव धर्म को स्थापित करने वाला ग्रंथ माना जाता है। विष्णु पर्व का खंड श्रीमद् भागवत गीता में वैष्णव दर्शन को नंद नारायण कथा के रूप में वर्णित किया गया है। शांति पर्व के नारायणी खंड में नारायण को भक्ति से प्राप्त करने का मार्ग दिखाया गया है। अनुशासन पर्व में विष्णु सहस्र नाम स्तोत्र का वर्णन है, जिसमें विष्णु के 1000 नामों का वर्णन है। यहाँ पर वासुदेव कृष्ण को और नारायण विष्णु को एक ही माना गया है। हरिवंश, जिसमें महाभारत का प्रक्षिप्त है, में वासुदेव कृष्ण की जीवन लीलाओं आदि का वर्णन किया गया है। 18 पुराणों में कम से कम 6 विष्णु की महिमा से संबंधित थे। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारायणी पुराण, गरुड़ पुराण, पद्म पुराण तथा वराह पुराण विष्णु को समर्पित पुराण है। विष्णु पुराण विष्णु को समर्पित सबसे प्रमुख पुराण है। रामानुज ने इसे सबसे प्रमुख पुराण माना है। यहाँ विष्णु को सृष्टि के निर्माण, पोषण एवं नियंता के रूप में दर्शाया गया है। नारायणी पुराण में विष्णु भक्ति को मोक्ष का साधन माना गया है। विष्णु की प्रशंसा में महात्मनों की भी रचना हुई है। इन महात्म्य ग्रंथों में गया महात्म्य, मथुरा महात्म्य, पुरुषोत्तम क्षेत्र महात्म्य तथा वृंदावन महात्म्य आदि प्रमुख है। विष्णु महिमा से वर्णित उपपुराणों में विष्णु धर्म, विष्णु धर्मोत्तर, नरसिंह, वेदनादीय, क्रिया योगसार आदि प्रमुख हैं। विष्णु भक्ति का वर्णन जैन एवं बौद्ध धर्म के साहित्य में भी वर्णित है। विमल सूरीकृत पोमचार्यम नामक जैन ग्रंथ में राम के संस्करण का प्रारंभिक वर्णन प्राप्त होता है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी विष्णु परिवार की व्याख्या है। बौद्ध ग्रंथों जैसे मिलिंद पन्हो, अवदान सतम तथा साधारण पुंडरिक में वैष्णव देवों की स्तुति की गई है। ललित विस्तर में बुद्ध एवं उनके नारायण विष्णु अवतार का साक्ष्य प्राप्त होता है। पतंजलि के महाभाष्य में विष्णु पूजा की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। भरत के नाट्य शास्त्र में विष्णु एवं उनके चिन्हों के पुनर्जन्म को वर्णित किया गया है। सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत भाषा की रचना गाथा सप्तसती में विष्णु एवं उनके अवतारों को संदर्भित किया गया है। भास ने अपने बालचरित में कृष्ण की बाल लीला को जीवंत उतार दिया है। इनके अतिरिक्त कालिदास, विशाखदत्त, चरक, सुश्रुत आदि ने भी विष्णु का वर्णन किया है। पूर्व मध्य काल में बंगाल के सेन वंशी शासक शाह धर्म के न्यायी थे, लेकिन लक्ष्मण सेन ने वैष्णव धर्म का अनुसरण किया था। उसी के समकालीन जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। गीत गोविंद को वैष्णव भक्ति में उत्तर भारत में प्रसारित करने का आधार माना जाता है। परंपरा के अनुसार श्रीधर दास की सदुक्ति कर्णामृत के कुछ श्लोकों की रचना लक्ष्मण सेन ने की थी। इसमें राधा कृष्ण भक्ति का वर्णन है। राधा का कृष्ण संप्रदाय से जुड़ना इसी काल में प्रारंभ हुआ था। इस काल के दो अन्य प्रमुख विद्वानों अनिरुद्ध भट्ट तथा हलयुद्ध भट्ट ने क्रमशः भगवत तत्व मंजरी तथा वैष्णव सर्वसव की रचना की थी। संत के रूप में चैतन्य शंकर की 10 नामी परंपरा से संबंधित थे। श्रीधर स्वामी ने अपने विष्णु पुराण, भगवत गीत की टीकाओं पर वैष्णव परंपरा तथा शंकर के अद्वैत मध्य समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया है। श्रीधर स्वामी का अनुसरण करते हुए माधवेंद्रपुरी तथा चैतन्य के गुरु ईश्वरपुरी ने यह परंपरा जारी रखी। ईश्वरपुरी ने वैष्णव परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए श्रीकृष्ण लीलामृत तथा रुक्मिणी स्वयंवर की रचना की। चैतन्य के पश्चात बंगाल में मुरारी गुप्त ने चैतन्य चरणामृत लिखा। पुरी में चैतन्य के सहयोगी ने उनका जीवन चरित्र कडक लिखा। कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरणामृत में कडक का प्रयोग चैतन्य के जीवन को लिखने के लिए किया है। चैतन्य पर अन्य जीवनियों में वृंदावन दास की चैतन्य भागवत, कृष्णदास कविराज की चैतन्य चरितामृत, लोचनदास की चैतन्य मंगल तथा जयनंद की भी चैतन्य मंगल प्रमुख है। चैतन्य ने अपनी वैष्णव भक्ति के प्रसार के लिए संस्कृत में 8 सूक्तों शिष्टाष्टकम के अतिरिक्त कुछ नहीं लिखा। वृंदावन के गोस्वामी जैसे रूप सनातन, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट तथा जीव ने भक्ति पर बृहद ग्रंथ लिखे। उन्होंने भक्ति साहित्य को एक निश्चित दिशा प्रदान की। रूप एवं सनातन को स्वयं चैतन्य ने भक्ति परंपरा को सृजित करने का निर्देश दिया था। सनातन ने बृहद भगवामृत, दीर्घदर्शनी, हरि भक्ति विलास, वैष्णवोत्पन्न की रचना की। रूप ने उद्धव संदेश काव्य, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि, पदावली, नाटक चंद्रिका, संक्षेप भागवत मृत की रचना की थी। जिस छह गोस्वामियों में सर्वश्रेष्ठ था, इसने वाराणसी में अध्ययन किया था तथा उसे सर्वश्रव भारतीय दर्शन का ज्ञान था। अध्ययन के पश्चात वह वृंदावन में निवास करने लगा। जीव की मुख्य रचना भगवत संदर्भ है। यह वैष्णव दर्शन के छह संदर्भ तत्व भागवत परमात्मा कृष्ण भक्ति तथा प्रति संदर्भ पर टीका है। जीव ने हरिनाम अमृत व्याकरण की भी रचना की थी। इसमें राधा कृष्ण आदि का प्रयोग व्याकरण के नियमों के प्रयोग हेतु किया गया है। इसके अतिरिक्त गोपाल भट्ट ने हरिभक्त विलास की रचना की, रघुनाथ की रचना गौरांग सत्व कल्पतरु ब्रजविलास सख तथा संत शंकर देव ने संस्कृत भाषा में भक्ति रत्नाकर की रचना की, लेकिन शंकर की अधिकांश रचना कामरूपी शैली में हुई है। इस शैली में रचित प्रमुख रचनाएं भक्ति प्रदीप कीर्तन गुड़माला आदि है। शंकर देव ने श्री कृष्ण एवं राम एवं सीता के जीवन पर आधारित नाटकों की भी रचना की। दक्षिण में संगम साहित्य में विष्णु का वर्णन हुआ है। परिपाडल में विष्णु पूजा का उल्लेख है। आचार्य परंपरा में यमुनाचार्य ने अगम प्रमाण्य की रचना की। उनकी एक अन्य रचना गीतार्थ संग्रह है, जो भगवद गीता की टिप्पणी है। यमुनाचार्य ने महापुरुष निर्णय में विष्णु को सर्वोच्च देव माना गया है। रामानुज ने विशिष्टा द्वैत की स्थापना के लिए वेदांत संग्रह वेदांत द्वीप तथा वेदांत सार की रचना की। रामानुज के पश्चात उनके शिष्य कुरुकेश ने भी श्री वैकुंठ सत्य की रचना की। इसे चोल शासक कलुत्तुंग के द्वारा प्रताड़ित भी किया गया था। निम्बिकाचार्य ने राधा भक्ति को स्थापित करते हुए वेदांत परिजात सौरभ की रचना की थी। निम्बिकाचार्य के शिष्य भी श्रीनिवास ने इसी ग्रंथ पर अपना भाष्य वेदांत सौरभ लिखा। माध्वाचार्य ने उपनिषदों पर भाष्य लिखने के अतिरिक्त गीता के शिक्षाओं पर आधारित गीता भाष्य तथा गीता तात्पर्य निर्णय की रचना की। माधव ने भक्ति प्रार्थना जैसे द्वादश स्त्रोत यमक भारत नरसिंह नख स्त्रोत आदि की रचना की थी। बल्लभ ने वैष्णव भक्ति पर लगभग 84 ग्रंथों की रचना की। भगवत तत्वदीप सुबोधनी अणुभाष्य तत्वार्थदीप प्रकाश भगवत गीता भाष्य कृष्णाश्रय प्रेमामृत सिद्धांत मुक्तावली सिद्धांत रहस्य भक्तिवर्धनी आदि प्रसिद्ध है। इन साहित्य ग्रंथों में न केवल वैष्णव धर्म को समस्त भारत में स्थापित किया अपितु भारतीय साहित्य के कोष को भी समृद्ध किया।